بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پرستت ہے۔ شروتاؤں، آج کے کارکرم کے آرمبھ میں آپ سورہ فصلت کی 30ویں سے لے کر 33ویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عباس امام جمعہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياء من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر دڑھتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکا کل ہو اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اچھا ہوگی۔ اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم مانگ کرو گے۔ یہ اتینت کشماشیل اور دیاوان ایشور کی اور سے تمہارے آتتھ کا سادھن ہے، اور اس ویکتی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایشور کی اور بلائے، اچھے کرم کرے اور یہ کہے کہ نشچت روپ سے میں اس کے آگیاکاری بندوں میں سے ہوں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، سبھا میں آپ کا سواگت ہے۔ آج شکروار ہے، دسمبر کی 15، آذر ماہ کی 24 تاریخ اور جمادی الثانی کی 1 تاریخ۔ کاریکرموں کی روپ ریکھا آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو وشو سماچار سنوائیں گے، وشو سماچاروں کے بعد راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم آپ سنیں گے۔ راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم کے اپرانت آپ کا اپنا من پسند کاریکرم پیش کیا جائے گا، پتر سنسار۔ ہماری سبھا کا انتیم کاریکرم ہوگا وگیان کی ڈگر۔ دوستو، یہ تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا۔ اب کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آج کے پرمکھ سماچاروں کا سارانش۔ ابو ترابی فرد کہتے ہیں کہ غزہ کے پرتیرودھ نے پشچم کی پول کھول دی۔ راج سنگھ نے غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں مارے جانے والوں کی سنکھیا کو ابھوتپور بتایا۔ غزہ میں تازہ جھڑپوں میں کئی اسرائیلی سینک مارے گئے۔ زائونی شاسن نے حماس کے نیتاؤں کو پکڑنے پر انعام کی گھوشنا کی ہے۔ اب آپ وسطار سے قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔ ایران کی نیائے پالیکا کے پرمکھ نے راسک کی گھٹنا کے دوشیوں کو دنڈت کرنے پر بل دیا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین محسنی ایجئی نے راسک نگر میں شہید ہونے والے سرکشا بلوں کو شردھانجلی ارپت کی۔ انہوں نے اس آتنکی گھٹنا کے دوشیوں کو سزا دلانے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے سیستان و بلوچستان پرانت کی نیائک ویوستھا کے ادھیکاریوں کو آدیش دیا ہے کہ وہ دوشیوں کو گرفتار کر کے ان کو نیائک کٹگھرے میں کھڑا کرنے کا ہر سمبھو پریاس کریں۔ الیکھنی ہے کہ آتنکوادیوں نے کل رات کے سمے سیستان و بلوچستان پرانت کے راسک نگر میں سرکشا بلوں کے کیندر پر کائرتا پورن حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں ایرانی سرکشا بلوں کے 11 جوان شہید ہو گئے تھے، جبکہ کچھ انیہ گھائل ہوئے تھے۔ تہران کے امام جمعہ نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں نے امریکہ اور زائونی شاسن کے چہرے پر پڑی نقاب ہٹا دی ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین ابو ترابی فرد نے نماز جمعہ کے خطبے میں کہا ہے کہ غزہ واسیوں نے فلسطین کے سنگھرش اور بلیدان کے لمبے اتہاس میں ایک نیا ادھیائے جوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ والوں نے امریکہ، اس کے پشچمی سہیوگیوں اور زائونیوں کے چہروں پر پڑی نقاب کو ہٹا کر ان کے دشٹ روپ کو دنیا کے سامنے دکھا دیا۔ ابو ترابی فرد کے انوسار الاقصی آپریشن نے فلسطینیوں کی بہادری کو پوری دنیا کے سامنے پردرشت کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ نے پشچم کے مانوادھیکاروں، سوتنترتا، اداروواد اور ابھیویکتی کی سوتنترتا جیسے کھوکھلے ناروں کی پول کھول کر رکھ دی۔ ایران میں 15 دسمبر کو فلسطینیوں کے سمرتھن میں دیش ویاپی ریلیاں نکالی گئیں، جمعہ کی نماز کے بعد راجدھانی تہران سہیت ایران کے بہت سے نگروں میں لوگوں نے فلسطینیوں کا سمرتھن کرتے ہوئے غزہ میں زائونی شاسن کے حملوں کی کڑی نندہ کی۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد ایران کے بہت سے نگروں کے لوگوں نے ریلیاں نکال کر غزہ میں اسرائیل کی کاروائیوں کا ورودھ کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگائے۔ غزہ پر زائونیوں کے حملوں کے بعد سے اسلامی گڑتنت ایران کے الگ الگ شہروں اور بستیوں میں غزہ واسیوں کا سمرتھن کرتے ہوئے ورودھ پردرشن کیے جا رہے ہیں۔ راشٹر سنگھ کے مہا سچیو نے اسرائیل کی آلوچنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے پریڑام میں مرنے والوں کی سنکھیا ابھوتپورو ہے۔ اینٹونیو گوٹیرس نے شکروار کی صبح اسرائیلی حملے میں مرنے والے عام ناگرکوں کی سنکھیا کے بارے میں چیتاونی دی۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے خلاف اسرائیلی حملے اور ان حملوں میں مرنے والے عام فلسطینیوں کی سنکھیا ابھوتپورو ہے جو اسہنیے ہو گئی ہے۔ اینٹونیو گوٹیرس نے اسی پرکار کہا کہ غزہ کی ورتمان استھتی میں وہاں پر مانوتا پریمی کاروائی اسمبھو ہے۔ اسی پرکار انہوں نے کہا کہ راشٹر سنگھ پوروی قدس اور پشچیمی کنارے سہیت دوسرے کھیتروں میں ہنسا تناؤ اور جنگ میں وردھی سے چنتت ہے۔ حماس کی سینک شاخہ عز الدین قسام نے غزہ کے پور میں استھت اشجائیہ کھیتر میں لڑائی کے تیز ہونے کی سوچنا دی ہے۔ اس نے پیدل اسرائیلی سینکوں کو وسفوٹ کا لکش بنایا ہے جس میں کم سے کم 10 زائونی سینک مارے گئے۔ اشجائیہ کھیتر میں کئی دنوں سے حماس اور اتکرہنکاری سینکوں کے بیچ ہونے والی لڑائی کی اور سنکیت کرتے ہوئے سماچار پتر معارب نے لکھا ہے کہ حماس نے زائونی سینکوں کے سینی واہنوں اور ٹینکوں کی اور جو راکٹ فائر کی ہیں ان کی سنکھیا بہت زیادہ ہے۔ فلسطین کے حماس آندولن نے پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی 72 بختر بند گاڑیوں کو دھوست کر دیا۔ حماس کی سینی شاخہ عز الدین قسام کے پروکتا نے بتایا ہے کہ ہمارے جیالوں نے پچھلے 72 گھنٹوں کے بھیتر زائونیوں کے 72 سینی واہنوں کو نشٹ کر دیا، جن میں ٹینک بھی شامل ہیں۔ ان کے انوسار ان زائونی سینی واہنوں کو کہیں پر تو پوری طرح سے اور کہیں پر آنشک روپ سے شتی ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ نے گروار کی رات کو بتایا تھا کہ حماس کے لڑاکوں نے زائونی کے سینی واہنوں کے ورودھ اینٹی ٹینک راکٹوں کا پریوگ کیا۔ اسرائیل نے غزہ پٹی کے وبھن کھیتروں پر عربی بھاشا میں ایک اعلان بانٹا ہے جس میں کھیتر کے لوگوں کا آہوان کیا گیا ہے کہ جو بھی حماس کے نیتا اور کمانڈروں کا پتہ بتائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اسی پرکار اسرائیلی سینا دوارا وترت اعلان میں حماس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حماس کے پاس اب انڈا ابالنے کا بھی سمے نہیں بچا ہے اور اب اس کا انت نکٹ ہے۔ اسرائیل کے اویدھ قبضے سے اپنی ماتر بھومی کی آزادی کے لیے سنگھرش کرنے والے حماس کے ایک نیتا عزت رشق نے اسرائیلی سینا دوارا وترت کیے گئے اعلان کے جواب میں کہا ہے کہ حماس کے پاس واسطو میں انڈا ابالنے کا سمے نہیں ہے، کیونکہ پرتیرودھ کے جوان مرکاوا ٹینکوں کا کباب بنانے میں ویست ہیں۔ اسرائیل کے اویدھ قبضے سے اپنی ماتر بھومی کی آزادی کا پریاس کرنے والے حماس کے ایک ورشٹھ نیتا نے امریکہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے بعد غزہ پٹی کے بھوش کے بارے میں سوچنے کے بجائے وہ اسرائیل کے بھوش کے بارے میں سوچے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے انوسار حماس کے ورشٹھ سدس نے کہا ہے کہ حماس کی سینی شاخہ القسام نے غزہ پٹی کے اتی گرہنکاری سینکوں کا قبرستان بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو اور ان کی سینا کی پراجے کی گھوشنا میں اب ادھک سمے باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اسی پرکار حماس کے ورشٹھ سدسیہ نے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ کے پورن روپ سے بند ہو جانے اور حماس کی شرطوں کو سویکار کر لینے کے بعد ہی بندیوں کی آزادی کے بارے میں وارتا کی جا سکے گی۔ پاکستان کی پیپلز پارٹی نے پورو ودیش منتری اور پارٹی کے ادھیکش بلاول بھٹو کو 2024 کے چناؤں میں بطور پردھان منتری امیدوار اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی پورو راشٹرپتی آصف علی زرداری کو دوبارہ راشٹرپتی بنانے کے لیے بھی اس پارٹی نے اعلان کیا۔ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूचना सचिव फैसल करीम ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे, जबकि उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को फिर से राष्ट्रपति के लिए नामित किया जाएगा। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार आसिफ अली जरदारी आगामी चुनावों के बाद फिर से राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। रूस ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। भारत को सस्ते दामों पर तेल बेच रहे रूस ने भारत को एक और ऑफर दिया है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान कई अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों ने रूस में अपना व्यापार बंद कर दिया। ऐसे में रूस की मंशा है कि इन कंपनियों द्वारा छोड़े गए कारोबार को भारतीय कंपनियां अपने नियंत्रण में ले लें। यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि पश्चिम की ओर से अब यूक्रेन युद्ध के गतिरोध को समझ जाना चाहिए। सर्गेई लावरोफ ने पश्चिम विशेषकर अमरीका की ओर से यूक्रेन के लिए आर्थिक सहायता में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम विशेषकर अमरीका को उस युद्ध में आने वाले गतिरोध को समझना चाहिए जो उन्होंने स्वयं शुरू करवाया था। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं, क्या हमास को नष्ट करना मुमकिन है, इसराइल को साइबर अटैक का सामना, और कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए जारी रहेगा अभियान। तो सबसे पहले, क्या हमास को तबाह करना मुमकिन है? यूरोप के कई अधिकारियों ने हाल ही में ये बयान दिया है कि हमास को नष्ट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक विचारधारा है और विचारधारा को कभी भी तबाह नहीं किया जा सकता। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
गजा युद्ध को आरंभ हुए अब तीसरा महीना चल रहा है, लेकिन ज़ायोनी शासन हमास के विनाश सहित अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं हो पाया है। ज़ायोनी शासन ने गजा में अपने व्यापक और विस्तृत सैन्य अभियान का लक्ष्य हमास को नष्ट करना घोषित किया था। ये शासन ये सोचता था कि एक और तूफान अल अक्सा ऑपरेशन हमास के लड़ाकों द्वारा किया गया था, और इस ऑपरेशन में विफलता की भरपाई हमास के विनाश के अलावा संभव ही नहीं है, और दूसरी ओर वो हमास को नष्ट करके अपने खिलाफ एक सतत और स्थायी खतरे को दूर कर देगा। हालांकि गजा के खिलाफ युद्ध को लगभग 70 दिन बीत चुके हैं। इसराइल न केवल हमास को खत्म करने में विफल रहा है, बल्कि ज़ायोनियों के खिलाफ युद्ध जारी रहने की वजह से उन्हें हर ओर से आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। पिछले दिनों कई पश्चिमी और यूरोपीय हस्तियों ने कहा है कि हमास एक विचारधारा है, इसे खत्म करना संभव नहीं है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी बोरेल ने हाल ही में बार्सिलोना में एक बैठक में कहा है कि हमास एक विचारधारा है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इससे पहले अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के प्रमुख रिचर्ड हॉस ने कहा था कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक विचारधारा है। इन व्यापक आलोचनाओं के बाद इसराइल के युद्ध मंत्री युवाव गैलेंट ने हमास के साथ युद्ध की कठिनाई की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये युद्ध कई महीनों तक चल सकता है। सच तो यह है कि ये एक थका देने वाला युद्ध है जो हमास का सफाया नहीं कर सकता, क्योंकि हमास को भारी जन समर्थन प्राप्त है। हमास के पास एक बहुत ही जटिल और बड़ा संगठन है। गजा पट्टी में पिछले दो महीनों में यह आंदोलन जिहाद इस्लामी और अन्य गुटों की मदद से इसराइलियों के खिलाफ भीषण युद्ध करने में सफल रहा है और उसका स्थिति पर नियंत्रण है। दूसरी ओर हमास को फिलिस्तीनियों का भरपूर समर्थन हासिल है। इसी समर्थन की वजह से हमास को नष्ट करना असंभव है। इसराइलियों को उम्मीद थी कि गजा पट्टी के निवासियों के जनसंहार और इस क्षेत्र में भारी विनाश के कारण स्थानीय लोग हमास आंदोलन का समर्थन करना बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके विपरीत उन्होंने हमास का समर्थन और भी तेज कर दिया है। फिलिस्तीनी समाज और गजा पट्टी के एक हिस्से के रूप में हमास ने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों शहीदों को बलिदान किया है। इसके परिणाम स्वरूप उसने मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों में अपनी जगह बना रखी है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हमास को खत्म करने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता।
गजा के विषय को ही जारी रखते हैं। मैदाने जंग में जहां इसराइल को एक ओर फिलिस्तीनियों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उसे विभिन्न संस्थानों पर साइबर अटैक का भी सामना करना पड़ रहा है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहदी।
फिलिस्तीनियों के विरुद्ध सैन्य युद्ध में कुछ भी हासिल न कर पाने वाले जानी शासन को एक बड़े साइबर युद्ध का सामना करना पड़ा है। अलक्सा तूफान को करीब 70 दिन हो चुके हैं। तूफान अलक्सा ऑपरेशन में जानी शासन को अपने 75 साल के इतिहास में सबसे बड़े खुफिया और सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा है। इस पराजय का महत्वपूर्ण कारण गजा के खिलाफ व्यापक युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध अपराधों के सभी उदाहरण सामने आ गए, लेकिन जानी शासन अपना कोई भी सैन्य लक्ष्य हासिल न कर सका, जिसमें कैदियों की रिहाई और हमास का विनाश भी शामिल था। हालांकि पिछले 70 दिनों में जानी शासन की विफलताएं और कमजोरियां केवल जटिल सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इस शासन ने सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भी कई कमजोरियों और खतरों का सामना किया। जानी शासन के साइबर सुरक्षा संगठनों ने घोषणा की है कि पिछले दो महीनों में व्यक्तिगत जानकारी लीक होने के 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो सामान्य दिनों की तुलना में 10 गुना अधिक हैं। बताया जा रहा है कि जानी शासन को अपने इतिहास में अब तक के सबसे बड़े साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है। साइबर हमलों के इस चरण में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिनमें सबसे पहला यह है कि जानी शासन पहले से कहीं अधिक संयुक्त सैन्य खुफिया सामाजिक यानी रिवर्स माइग्रेशन और साइबर खतरों का सामना कर रहा है। दूसरा यह है कि पिछले दो महीनों में साइबर हमले तेज हुए हैं, क्योंकि जानी शासन ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा अंजाम दी है, नरसंहार युद्ध अपराध और शांति के खिलाफ अपराध किए हैं। वास्तव में बड़े पैमाने पर साइबर हमले जानियों के अपराधों का जवाबी कार्रवाई है। तीसरा ये कि जानी शासन के खिलाफ साइबर हमलों में व्यापक लक्ष्य शामिल हैं और ये कुछ खास संस्थानों और संगठनों तक सीमित नहीं है। रेलवे विभाग, जल शोधन और वितरण केंद्र, समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया, खुफिया और सैन्य संस्थाओं सहित कई अन्य संस्थानों को साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है। चौथा यह कि कुछ साइबर हमले जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। उदाहरण स्वरूप, साइबर एवेंजर्स के समूह ने जल शोधन और वितरण केंद्र पर हमला किया और इस कार्रवाई को इसराइल की ओर से गजा पट्टी में पानी की कटौती का जवाब करार दिया गया और आंख के बदले आंख का संदेश इसराइली अधिकारियों को भेजा गया। पांचवां बिंदु, साइबर हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि से जानी अधिकारी गंभीर चिंता में घिर गए हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये विषय इसराइल और प्रतिरोधकर्ता गुटों के बीच युद्ध का एक और मोर्चा बन गया है, जिस पर सैन्य संघर्ष के विपरीत बमबारी नहीं की जा सकती। तूफान अल अक्सा की तरह साइबर युद्ध ने ज़ायोनी शासन की प्रतिरोधक शक्ति पर सवाल उठा दिया है और इसकी खुफिया और सैन्य शक्ति की पोल खोल दी है।
और अब रुख करते हैं भारत का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर के राजनीतिक दलों का कहना है कि कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए अभियान जारी रहेंगे। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आया है, परंतु हमारा ये मानना है कि कोई भी चीज अभियान के बगैर हासिल नहीं होती है और हमारे नेता ने ये बात बल देकर कही है कि कश्मीर के विशेष अख्तियारात के हवाले से हम अपना अभियान जारी रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने श्रीनगर में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि जो वर्डिक्ट सामने आया है वो उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि इतिहास की जो चीजें हैं वो हमारे पक्ष में थी, परंतु जो वर्डिक्ट आया है उसमें उसका कोई भी जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि हम इन चीजों को एक अभियान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं और इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना अभियान जारी रखेगा और उन्होंने इस हवाले से एक रणनीति भी बना रखी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
हमारे लीडर ने साफ कर दिया उसमें क्या है, दिस स्ट्रगल विल कंटिन्यू, वी स्ट्रगल फॉर इट एंड वी होप दैट वी विल विन द फाइट इंशाल्लाह, क्योंकि हम हक पे हैं और सारी तवारी की जो वाकात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हिस्ट्री है, वो सब फेवर करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, यहाँ के लोगों को, चाहे वो एक स्पेशल स्टेटस हो जम्मू कश्मीर का या अकार्ड जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुए हैं, वो सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि कुछ चीज तो है जिसको पूरा करना है। तो मेरे ख्याल में कल उमर साहब ने जो बेहतरीन अल्फाज में कहा, वी सपोर्ट उमर साहब, वी बैक हिम ऑन द ऑन ऑल इश्यूज ही जस्ट एक्सप्रेस्ड देयर एंड इंशाल्लाह वी होप दैट विल गेट अ गुड रिस्पांस फ्रॉम द पब्लिक।
इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन और भाजपा ने कहा है कि धारा 370 और 35A अब इतिहास बन चुका है, जो इसको वापस लाने की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के द्वारा लोगों के जज्बातों के साथ खेलना चाहते हैं। भाजपा के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि ये बात सिद्ध हो गई है कि पिछले 4 वर्षों के बीच जम्मू कश्मीर में अमन लौट आया है और हर तरफ खुशहाली नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35A यहाँ तमीर तरक्की में रुकावट था, इसे हटाकर जम्मू कश्मीर को तरक्की की हर सतह पर पहुंचा दिया जाएगा, यह भारत के प्रधानमंत्री का वादा है और वो अपने वादे को पूरा करना जानता है। उन्होंने कहा कि अब भी जो कश्मीर के क्षेत्रीय दल है वो लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, परंतु हमारा ये मानना है जो अब युवा है यहाँ का वो उनकी इस राजनीति में नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में शांति और तरक्की के ख्वाह हैं और हमारी ये आशा है कि जम्मू कश्मीर को तरक्की के हर स्तर पर पहुंचाया जाए। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। दोस्तों, अभी आपने हमारा कार्यक्रम सुना राजनैतिक चर्चा, और अब हम पेश करने जा रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी
और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
आज भी आपके ईमेल आपके अच्छे अच्छे विचार कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
तो सबसे पहले ईमेल से शुरू कर रहे हैं। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से भारती नागनपुरे। ये हमेशा दूसरे नागनपुरे होते हैं, ये आज भारती नागनपुरे हैं। सबसे पहले इन्होंने एक सुविचार लिखा है। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। इसके बाद आगे लिखते हैं कि दीदी मरियम जी सलाम, आप सभी कैसे हो जी? हम भी यहाँ एकदम ठीक है। रेडियो तेरा हिंदी सेवा के कार्यक्रम इन दिनों हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप हर शुक्रवार के दिन ईरानी संस्कृति से जुड़ी जानकारियों से हमें अवगत कराते हैं, उनको सुनकर हमारा बहुत ही ज्ञान बढ़ता है। शुक्रिया।
नागनपुरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम पत्र संसार से। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सुविचार के लिए। दीदी, बड़ी अच्छी बात कही, जो लोग सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उन तक वो चीज़ पहुँच जाती। मैं एक चीज़ में और ऐड करना चाहूँगा कि सब्र के साथ इंतज़ार करना और लेकिन अपना प्रयास जारी रखना, यानी प्रयास रोकना नहीं चाहिए और नतीजे का इंतज़ार करना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ी कामयाबी दिलाता है। बल्कि एक तरह से कहते हैं कि ये दृढ़ता और प्रतिरोध की भी ख़ास बात ही होती है कि आप संयम के साथ और लगन के साथ अपना काम जारी रखें और उतावले ना हों कि जल्दी नतीजा मिल जाए। तो ये चीज़ कामयाबी में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और महत्वपूर्ण है। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर पत्र के लिए, सुविचार के लिए, ईमेल के लिए, जो बातें आपने लिखी हैं उसके लिए। और आशा ये करते हैं कि आपका पत्राचार का ये सिलसिला जारी रहेगा, अच्छे अच्छे विचार इसी तरह आप भेजते रहेंगे और कार्यक्रमों के बारे में टिप्पणी जो आपने की है वो भी हमारे लिए उत्साहवर्धक है कि इससे जानकारी बढ़ती है। कोशिश यही है मीडिया के लिए, कहते हैं कि मीडिया के जो महत्वपूर्ण काम हैं उनमें एक काम यह है कि लोगों को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और एंटरटेन करना, ये तीनों काम होते हैं। और अगर हम इस पे पूरे उतरते हैं तो ये खुशी की बात है।
जी, मोहम्मद जायद इस्लाम जसीम, इन्होंने नंदनपुर शाखरी शकरीपारा अतईकुला पबना बांग्लादेश से लिखा है। मुझे रेडियो तेहरान बहुत पसंद है, मैं बंगाली और हिंदी कार्यक्रम बहुत दिनों से सुनता आया हूँ, इसलिए मैं उन्हें मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं उन्हें सुनता हूँ। मैं रेडियो तेहरान फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देने का अनुरोध करना चाहता हूँ।
आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद जायद जी। अच्छा दीदी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बंगाल वाला इलाका है, पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश, वहाँ एक जो स्थानीय भाषा है बंगला, उसके आधार पर हम देखा कि जो हिंदी और उसमें थोड़ा सा फर्क ये होता है कि वो जा को जा और जा को जा इस तरह से उच्चारण करते हैं, तो थोड़ा सा उच्चारण उनका अलग है। मेरे ख्याल से अगर हम यही नाम उनका हिंदी में कहेंगे तो हम मोहम्मद जायद कहेंगे। और ये कि दोनों भाषाओं को आप सुनते हैं ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ से बंगला प्रसारण भी नियमित जाता है और बहुत ही व्यवस्थित है। आशा है कि आप हिंदी के साथ भी इसी तरह से पत्राचार बनाए रखेंगे। लाइव की बात आपने कही है, फेसबुक लाइव की बात कही है। फेसबुक के पेज के साथ हमारे एक दो बार गंभीर समस्याएं पेश आई और वहां पर हमको समस्या हुई मेटा की पॉलिसियों की वजह से। अलबत्ता उस वक्त मेटा नहीं था, बाद में हुआ। इस वजह से वहाँ तो शायद हम लाइव अभी ना दे सकें, लेकिन यह है कि जल्दी ही कुछ अच्छी खबरें आएंगी, यानी अच्छी न्यूज़ इस माने में कि कुछ सोशल मीडिया पर और वेबसाइट के माध्यम से भी कुछ नए परिवर्तन हो रहे हैं, नई वृद्धि हो रही है जो आपके लिए सुचारू और लाभदायक होगी। श्रोता, अब बारी है संस्कृति से जुड़ी खबर की। दीदी हर हफ्ते कोई खबर ढूंढ के लाती हैं और ये खबरों की जो बरसात होती है, बौछार होती है, और बल्कि कहा जाए एक तरह से बमबारी होती है खबरों की, उस बीच में दीदी ये खबर लेके आती हैं संस्कृति से जुड़ी, जो कि बड़ा सुखद आभास कराती है। जी दीदी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। ईरान के पर्यटन मंत्री का कहना है कि विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा ईरानी ऐतिहासिक गांव कंदुवान को एक अनुकरणीय उदाहरणात्मक पर्यटन स्थल के रूप में नामित करने का निर्णय मेहनती ईरानी चट्टानों में रहने वाले लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का संकेत है। रविवार को एक्स नेटवर्क पर प्रकाशित एक पोस्ट में इज्जतुल्ला जरगामी ने UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के नेटवर्क में गांव को शामिल करने पर ईरान के आजरबैजान क्षेत्र जहां कंदुवान स्थित है उन लोगों को बधाई दी है। कंदुवान UNWTO की अनुशंसित सूची में शामिल होने वाले 8 ईरानी गांवों में से पहला बन गया है।
दीदी, कंदुवान गांव, ये खबर तो पहली बात मैं ये कहूँ कि बड़ी अच्छी खबर, जैसे मैंने कहा कि
और ये भी बताते जाऊँ, उत्तर पश्चिमी ईरान के तबरीज शहर से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में ये गांव स्थित है और चट्टानों पर बने आवासों का घर है।
दीदी, बहुत सुंदर गांव है ये
जी, और आपने देखा है तो स्थानीय लोग अभी भी रहते हैं।
मैं बताऊं आपको, मैं उस गांव के पास से गुजरा, लेकिन खेद ये है कि समय कम होने की वजह से उस गांव में नहीं जा सका मैं, क्योंकि मैं मेरा गंतव्य और आगे था और मुझे वहां पहुंचना था, रात होने वाली थी, तो ये अफसोस रहेगा। बल्कि जब भी मौका
आप
मिला
रात में वहीं रुक जाते उन लोगों के पास,
नहीं हमें वहां जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहले से सारी चीजें तय हो चुकी थी, लेकिन इसकी जो तस्वीरें हैं और वहां से हमने उसके रास्ते देखे जहां पे लिखा हुआ था कंदवान का रास्ता, तो वो बड़ा अच्छा और गाँव वाकई बड़ा खूबसूरत है। श्रोताओं से मैं ये चाहूंगा कि इसको नेट पे जाके कम से कम इसकी तस्वीरें देखें, इसके बारे में पढ़ें, वो भी इनके लिए बहुत ही रोचक होगा। और श्रोताओ, अब बारी है आपके कमेंट्स की।
अलेक्सा तूफान प्रतिरोध को क्षेत्र से दुनिया तक पहुंचा दिया ईरान, इस पर अशरफ लिखते हैं, यह अच्छा लग रहा है, वास्तव में बहुत ही अच्छा निर्णय, विशेष रूप से सही निर्णय, ईरान के राष्ट्रपति के लिए अजीब नहीं है। कई वर्षों तक सेवा की, जबकि उन्होंने पूर्णता के करीब इसका पालन भी किया। हमारे विश्व भर में अरबों लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उचित उपाय किए, वो इस भयंकर तूफान में एक अच्छे कप्तान हैं। सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान और क्षेत्र के लाखों लोग अभी तक कॉल पर नहीं हैं, वो एक छोटा प्रोजेक्ट मैन नहीं है। निस्संदेह दुनिया भर में कई प्रतिरोधों के लिए एक गौरव है, वो स्थानीय होने के साथ साथ प्रभावशाली वैश्विक नेताओं के साथ विश्व स्तर पर चित्रित किया जा रहा है, वो एक तरह के व्यक्ति हैं, उन्हें राष्ट्र और नेता से समर्थन मिल रहा है।
आपने तूफान अलक्सा की जो बात कही और जो खबर थी जिस पर यह कमेंट आया है, इसमें ईरान के राष्ट्रपति की बात की है, हमारे नाम क्या था,
अशरफ
साहब ने, राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी हैं इस समय, उनकी सरकार का जो स्टैंड रहा है तूफान अलक्सा ऑपरेशन के बारे में, फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध के बारे में, वो ईरान का घोषित स्टैंड है। ईरान जिसपे पिछले 44-45 साल से, यानी इस्लामी क्रांति आने के बाद से जिस पर डटा हुआ, बल्कि और उससे पहले से इमाम खुमैनी जिस समय क्रांति का अभियान चला रहे थे उसी समय उन्होंने फिलिस्तीनी प्रतिरोध के समर्थन का ऐलान कर दिया था और उस पर आज तक डटे हुए हैं। ज़ाहिर है सईद इब्राहिम रईसी भी उसी लीक पर, उसी डगर पर आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति रईसी ही तो वो तो एक प्रतीक हैं इस्लामी गणराज्य ईरान के, ईरानी समुदाय के, तो पूरा ईरान और पूरी ईरानी कौम इस विषय में अपना जो फैसला कर चुकी है, सैद्धांतिक फैसला, उसी मार्ग पे आगे बढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये विचार यानी प्रतिरोध का विचार, रेजिस्टेंस का विचार, ईरान से आगे निकलकर क्षेत्र के बहुत सारे देशों में फैल चुका है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इन देशों के बीच में, प्रतिरोध फोर्सेस के बीच में आपस में एक मजबूत रिश्ता कायम है। तो ये एक पूरा नेटवर्क है जो कि मजबूती से मौजूद है और लगातार आगे बढ़ रहा है।
जी,
और श्रोताओ अब बारी है कार्यक्रम के बहुप्रतीक्षित भाग की, यानी आपके अच्छे अच्छे विचार सुनने की, वो भी आपकी अपनी आवाज में। जी दीदी,
तो चलते हैं अपने के श्रोता मनोहर त्रिपाठी जी हैं, उनके विचार सुनते हैं।
जी,
मैं रेडियो तेहरान नियमित रूप से वेबसाइट और रेडियो दोनों को सुनता हूँ, इसके कार्यक्रम काफी पसंद आते हैं मुझे। मेरे साथ इस कार्यक्रम को मेरे घर के सारे सदस्य भी सुनते हैं, और ईरान के और भारत के संबंध और इतिहास जो हमारा रहा है भारत का ईरान के साथ, उसकी जानकारियां हमें मिलती हैं। इसके अलावा वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके अभिभाषण भी उसमें आते हैं, संपादकीय भी काफी अच्छी लिखी जाती है। इसके अलावा सपनों का ईरान एक कार्यक्रम है, उसमें वो भी मुझे काफी पसंद है, क्योंकि जो भी भविष्य की योजनाएं होती हैं किसी देश की वो काफी मायने रखती हैं, तो वो भी कार्यक्रम मुझे काफी पसंद है। इसके अलावा एक कहानी का प्रोग्राम भी उसमें आता है, कहानी का वो भी मुझे जाना पसंद है उसमें है। इसके अलावा उसमें जो समाचार आते हैं वो भी काफी सीधे साधे होते हैं, ना कि जाना घुमावदार होते हैं। ये लगता है कि जो उसके कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हैं वो भी इंटेलिजेंट और जाना प्रभावी है। ये राजनीति के संबंध में जो भी बात है वो तो सभी जगह से हम लोगों के अखबार भी आता है, लेकिन इसमें अधिकतर जो होते हैं ईरान और अमेरिका के संबंध में जो घटनाएं होती है उसकी विषय में जाना मुझे इंटरेस्ट रहता है कि क्या हो रहा है। जो आपकी सूचनाएं थी, जो भी न्यूज थी, वो दूसरे किसी एजेंसी या किसी स्टेशन से काफी डिफरेंट थी जो मुझे हकीकत बताती थी।
हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने श्रोता के और उनके इन सुंदर विचारों के लिए। दीदी, थोड़ा सा समय है, आप एक कमेंट शामिल कर।
जी जी, गजा में युद्ध विराम पर वीटो के बाद अमरीकी विदेश मंत्री की अपने सऊदी समकक्ष के साथ बैठक, इस पर अली करीमी लंगरुद्दीन लिखते हैं, वॉर यूके यूएसए का व्यवसाय है और उन्हें किसी भी कीमत पर ले जाया जाएगा, उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, इस युद्ध में हार ही आखिरी चीज है जो वे चाहते हैं, यह अमरीका का अंत होगा, इसराइल को भूल जाओ, उन्होंने अपनी युद्ध मशीन के लिए खरबों का भुगतान किया है, कोई उनसे हार की उम्मीद कैसे कर सकता है।
मैं कहना चाहूँगा दीदी इस पर के हार की उम्मीद का मतलब ये है कि दुनिया में कई ऐसी बड़ी ताकतें रही हैं, हालिया वर्षों और दशकों की बात की जाए तो सोवियत यूनियन की मिसाल दी जा सकती है, जो हथियारों के बड़े बड़े भंडारों की दृष्टि से काफ़ी बड़ा राष्ट्र था, लेकिन उसको शिकस्त हुई और भयानक शिकस्त हुई। तो जंगें जीती जाती हैं जज्बे से, जंगें जीती जाती हैं लगातार संघर्ष से, और जंगें जीती जाती हैं ईमान की ताकत से जो फिलिस्तीनियों के पास मौजूद है। साम्राज्यवादी शक्तियां बड़े बड़े प्रोग्राम लेके आती हैं, भयानक साजिशें लेके आती हैं, और लेकिन ये दौर वो है जब उन्हें बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया इसकी मिसालें हैं, यमन इसकी मिसाल है, और फिलिस्तीन भी इसकी एक और मिसाल बनने वाली है। दीदी, कार्यक्रम का समय हम यहीं पर समाप्त होता है, तो हमें अनुमति देनी होगी। श्रोताओं, अगली मुलाकात तक भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए।
खुदा हाफिज़।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपने सुना पत्र संसार, जिसे पेश किया अहमद अब्बास और मरियम मेहरदादी ने। इस कार्यक्रम के बारे में यदि आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से आप हमें अपने विचार भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो अब पेश है सभा का अंतिम कार्यक्रम, विज्ञान की डगर। विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ईरान और दुनिया में होने वाली प्रगति के विषय पर चर्चा करेंगे। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, तरबियत मुदर्रिस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ऑटोमोटिव उद्योग और घरेलू उपकरणों के लिए विकसित नैनो संरचित स्टील्स की एक नई पीढ़ी को वजूद में लाने में सफलता प्राप्त की है। इन विकसित नैनो संरचित स्टील्स में हल्कापन और उच्च शक्ति जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं और विनिर्माण में विकसित नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग के बावजूद इसकी उत्पादन विधि परंपरागत तरीकों के समान ही है।
ईंधन की ज्यादा खपत, पर्यावरणीय मुद्दों से मेल खाने वाले हल्के और सुरक्षित पुर्जों, उत्पादों और मशीनरी का उत्पादन उद्योग की महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है, जो उच्च शक्ति वाली धातुओं का उत्पादन की भूमिका प्रशस्त करती है। इस संबंध में इसकी कम कीमत, टूट फूट से बचने और वांछित यांत्रिक गुणों में इसकी आसान वैलिडिबिलिटी के कारण उसने उद्योगपतियों और शोधकर्ताओं का अधिक ध्यान आकर्षित किया। इस योजना के परिणाम मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग ए नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं।
दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक ईरानी शोधकर्ता ने एक अन्य शोधकर्ता के साथ मिलकर एक ऐसे सेंसर का आविष्कार करने में सफलता प्राप्त की है जो हवाई जहाजों के पंखों पर बर्फ बनने के साथ साथ इस बर्फ की प्रकृति की भी तुरंत पहचान करने में सक्षमता रखती है। हवाई जहाज के पंखों का जाम हो जाना हवाई और हवाई जहाजों की दुर्घटना के मुख्य कारणों में से एक है। हालांकि पायलट इस समस्या को अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानी गलती के कारण उसके निदान में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस नए सेंसर के आविष्कार से इस समस्या का समाधान संभव हो सका है।
यह सेंसर माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग विज्ञान के पंख पर बर्फ बनने की प्रक्रिया की शीघ्रता से पहचान करने के लिए करता है और यह पायलट को बर्फ की मौजूदगी से भी अवगत कराता है जो सामान्य रूप से आंखों को दिखाई नहीं देता है। यह सेंसर मजबूत और सस्ता है और प्रयोगशाला अध्ययनों में यह बर्फ बनने की प्रक्रिया की पहचान करने और कुछ सेकंड के भीतर इसकी रिपोर्ट करने में सफल रहा है।
इस बीच आम लोगों को इन बर्फों को पहचानने में 2 मिनट का समय लगा। इसके अलावा पायलट आमतौर पर हवाई जहाज के पंखों पर बर्फ उस समय देखते हैं जब हवा का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाता है और बनने वाली बर्फ को उसके पतलेपन और कम रंग के कारण केवल आम आंखों से नहीं पहचाना जा सकता। नया सेंसर बर्फ के पिघलने और पंखों की स्थिति सामान्य होने का भी पता लगा सकता है और इसे सभी प्रकार के विमानों पर स्थापित किया जा सकता है।
तरबियत मुदर्रिस यूनिवर्सिटी और रोयाज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जिंक ऑक्साइड का हड्डी के घावों के उपचार के लिए अच्छा नतीजा सामने आता है और इसका एंजियोजेनेसिस और ऑस्टियोजेनेसिस पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ता है। हड्डी के बड़े घावों का उपचार आज तक की उत्तक इंजीनियरिंग की मुख्य चुनौतियों में से एक है। इस समस्या को दूर करने के लिए कई समाधानों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से एक इंजीनियर सबस्ट्रेट पर एंजियोजेनिक और ऑस्टियोजेनिक कोशिकाओं के साथ रक्त वाहिकाओं का निर्माण इस समस्या के लिए एक उपयुक्त समाधान प्रतीत होता है।
इस शोध के परिणामों से पता चला है कि जिंक ऑक्साइड की मौजूदगी निर्मित सबस्ट्रेट के यंग के मापांक को 5.5 से 6.7 तक बढ़ा देती है। इसके अलावा जांच से पता चला है कि डिजाइन किए गए जोड़ में जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति एंजियोजेनेसिस और ऑसियोफिकेशन की प्रक्रिया में प्रभावी एंजाइमों की अधिक गतिविधि का कारण बनती है। ऐसी स्थितियों में जो मानव गर्भनाल की एंडोथेलियल कोशिकाओं और हड्डियों की स्ट्रोमल कोशिकाओं के साथ होती हैं, सबस्ट्रेट में 1:5 के अनुपात में तैयार किया गया है।
साथ ही जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति इस सबस्ट्रेट में एंजियोजेनेसिस को प्रेरित करती है और एंजियोजेनेसिस से संबंधित जीन की अभिव्यक्ति को बढ़ाती है। इस शोध के परिणामों से पता चलता है कि हड्डी के घावों के उपचार के लिए तैयार मचानों में जिंक ऑक्साइड की मौजूदगी से मचान में रखी कोशिकाओं के एंजियोजेनेसिस और ऑस्टियोजेनेसिस पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस शोध के नतीजे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोमेडिकल मटेरियल्स रिसर्च नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं।
दोस्तों, शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों की 4 संसदीय गणित टीम ने 26वीं अंतर्राष्ट्रीय छात्र गणित प्रतियोगिता 2019 IMC में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर 13वां स्थान हासिल किया। ये प्रतियोगिताएं बुल्गारिया में 6 से 12 अगस्त तक विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों की 70 से अधिक टीमों की भागीदारी के साथ आयोजित की गई और अमीर कबीर और ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी तकनीक विश्वविद्यालयों की अन्य टीमों ने भी इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
गणित विज्ञान संकाय के प्रमुख के अनुसार IMC प्रतियोगिता छात्र जो स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिताओं में से एक है और दुनिया के शीर्ष विद्यालयों की टीमें हर साल इस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। प्रतियोगिताओं के इस कोर्स में बॉन, HSE, सेंट पीटर्सबर्ग, ETH, ज्यूरिख, कैम्ब्रिज और चार्ल्स जैसे दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्र उपस्थित थे और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिसमें अंत में जर्मनी से बॉन विश्वविद्यालय, रूस से HSE विश्वविद्यालय और इंग्लैंड से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भाग लेने वाली विश्वविद्यालय टीमों में सर्वोच्च रैंक हासिल किया।
वैज्ञानिकों ने पहली बार विशाल और अज्ञात प्राचीन आकाश गंगाओं के ऐसे खजाने की खोज की है जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। इन आकाश गंगाओं को हबल टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता था। यह पहली बार है जब इतनी संख्या में आकाश गंगाओं के साथ इस तरह की खोज की गई है। इन वैज्ञानिकों ने 39 आकाश गंगाओं की खोज की है जो सुपरमैसिव ब्लैक होल और डार्क मैटर द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
इनमें से एक वैज्ञानिक के अनुसार ये आकाश गंगाएं बहुत ही मंद हैं और इनकी प्रकाश तरंग बहुत लंबी, वे मानव आंखों और यहां तक कि हबल टेलीस्कोप के लिए अप्राप्य रहे हैं। इन आकाश गंगाओं का अवलोकन न कर पाने का एक अन्य कारण इनके चारों ओर बहुत अधिक धूल की उपस्थिति है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने अटाकामा रेगिस्तान में अल्मा टेलीस्कोप का उपयोग किया जो ऐसी खगोलीय वस्तुओं को देखने के लिए आदर्श है। यह पहली बार है कि बहुत बड़ी आकाश गंगाओं की इतनी बड़ी आबादी की खोज की गई जो ब्रह्मांड के 13.7 अरब वर्ष के जीवन के पहले 2 अरब वर्षों में बनी थी। इस शोध के नतीजे नेचर में प्रकाशित हुए हैं।
दोस्तों आइए अश्वगंधा के कुछ अन्य फायदों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पेट की बीमारी में आप अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर मात्रा में बहेड़ा चूर्ण मिला लें। इसे 2 से 4 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर भाग में गिलोय का चूर्ण मिला लें। इसे 5 से 10 ग्राम शहद के साथ नियमित सेवन करें। इससे पेट के कीड़ों का उपचार होता है।
अश्वगंधा चूर्ण या अश्वगंधा पाउडर की 2 ग्राम मात्रा को गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से कब्ज की परेशानी से छुटकारा मिलता है। 20 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1 लीटर पानी तथा 250 मिलीग्राम गाय के दूध में मिला लें। इसे कम आंच पर पकाएं। जब इसमें केवल दूध बचा रह जाए तब इसमें 6 ग्राम मिश्री और 6 ग्राम गाय का घी मिला दें। इस व्यंजन का मासिक धर्म के शुद्ध स्थान के 3 दिन बाद 3 दिन तक सेवन करने से यह गर्भधारण में सहायक होता है।
दोस्तों अश्वगंधा चूर्ण के फायदे गर्भधारण की समस्या में भी मिलते हैं। अश्वगंधा पाउडर को गाय के घी में मिला लें। मासिक धर्म स्नान के बाद हर दिन गाय के दूध के साथ ताज़े पानी से 4 से 6 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन लगातार 1 माह तक करें। ये गर्भधारण में सहायक होता है। अश्वगंधा और सफ़ेद कटेरी की जड़ लें। इन दोनों को 10-10 मिलीग्राम रस का पहले महीने से 5 महीने तक की गर्भवती स्त्रियों को सेवन करने से अकाल में गर्भपात नहीं हो पाता।
2 से 4 ग्राम अश्वगंधा की जड़ के चूर्ण में मिश्री मिला दें। इसे गाय के दूध के साथ सुबह और शाम सेवन करने से ल्यूकोकोरिया में लाभ होता है। अश्वगंधा तिल उड़द गुड़ तथा घी को समान मात्रा में लें। इसे लड्डू बनाकर खिलाने से भी ल्यूकोरिया में फायदा होता है।
दोस्तों कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार हमें लिख भेजिए और अपनी सुविधा के अनुसार आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं parstoday.ir/hi। इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होने जा रही है। हम आप सभी से अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। खुदा हाफिज़।